पृष्ठ संख्या 137, अमेरिका और जापान के आपसी संबंध 1894 से 1921। सन 1894 के बाद अमेरिका के साथ जापान के संबंधों में परिवर्तन हो रहा था। पेरी के आगमन के बाद से दोनों देशों का एक दूसरे के प्रति सर्वाधिक मित्रतापूर्ण रुख रहा। जापान को भी कभी इस बात पर संदेह नहीं हुआ कि अमेरिका के सुदूर पूर्व में किसी भी तरह की प्रादेशिक महत्वाकांक्षा है। उसने समय समय पर अपने उदारतापूर्ण व्यवहार से प्रशांत सागर पार के अपने पड़ोसी के प्रति हार्दिक मित्रता का प्रदर्शन किया। वह जापान के तीव्र विकास को एक शुभचिंतक के रूप में गर्व दृष्टि से देखता था और उसे कभी भी उसकी प्रगति में अपनी सुरक्षा के लिए खतरे की संभावना नहीं दिखाई दी। बॉक्सर विद्रोह के पश्चात दोनों देशों ने मंचूरिया में मुक्त द्वार नीति को कायम रखने के लिए परस्पर सहयोग दिया। रूस के विरुद्ध युद्ध में जापान के साथ अमेरिका की पूर्ण सहानुभूति थी। रूस के साथ संघर्ष के लिए आवश्यक धन बहुत बड़ी मात्रा में न्यूयॉर्क के बैंकरों से कर्ज के रूप में प्राप्त हुआ और राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने, जहां तक अमेरिका के एक प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के लिए संभव था, अपनी सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया। इसके बदले में जापान अमेरिका को पश्चिम का एक ऐसा शक्तिशाली देश समझता था जिससे उसे किसी तरह के भय की आशंका नहीं थी और वह अमेरिका द्वारा प्रदर्शित निस्वार्थ मित्रता से अधिक प्रभावित हुआ। बहुत से जापानी विद्यार्थी अमेरिका के विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए गए और जब वे स्वदेश वापस लौटे तो उन्होंने उस देश की अत्यधिक सराहना की। इसके अलावा अमेरिका ने जापान की चाय और विशेषतः कच्चे रेशम के लिए एक अच्छा बाजार प्रस्तुत किया। अमेरिका जापान के माल का सबसे अच्छा ग्राहक था। यहाँ तक कि चीन में भी जापान के माल की उतनी अधिक खपत नहीं थी। इसके बदले में जापान अमेरिका से बहुत अधिक मात्रा में कपास, निर्माण उपकरण, मशीनें, लोहा व इस्पात आदि सामान खरीदता था। सन 1905 के अंत से दोनों देशों के बीच मतभेद की शुरुआत हुई। जापान की जनता का एक वर्ग पोर्ट्समाउथ की अप्रिय संधि की शर्तों के लिए अमेरिका को उत्तरदायी समझता था। यह संधि रूस के साथ चल रहे युद्ध की समाप्ति पर हुई थी। संभवतः उनकी यह मामूली सी नाराजगी शीघ्र ही समाप्त हो जाती अगर उसी समय कुछ और कारण न उपस्थित हो जाते। इनमें से प्रथम कारण आप्रवास की समस्या थी। प्रशांत सागर के तटवर्ती अमेरिकी राज्यों में अपने विकास कार्य के लिए सस्ते मजदूरों की बहुत कमी थी। कांग्रेस ने चीन के अकुशल मजदूरों का बहिष्कार कर दिया था और यूरोप के देशों के नए अप्रवासियों ने अभी इतनी दूर समुद्र पार करना शुरू नहीं किया था। जापान के अकुशल कामगारों को अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश पर जापान की अपेक्षा कहीं अधिक मजदूरी पर रोजगार के लिए उन्मुक्त क्षेत्र प्राप्त हो गया। जापान से कामगारों की बहुत बड़ी संख्या व्यापारियों तथा व्यवसायिकों के साथ या उनके पीछे पीछे प्रशांत महासागर तटवर्तीय प्रदेश में, विशेष रूप से कैलिफोर्निया में प्रविष्ट हुई। इसके बाद जब अमेरिका ने हवाई द्वीप को अपने प्रदेश में सम्मिलित कर लिया तो यहाँ आकर बसने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। स्वाधीनता प्राप्ति के वर्षों में इस द्वीप के बागान में काम करने के लिए हजारों की संख्या में जापानी कामगार आए और 1898 के बाद उन्होंने अमेरिका में प्रविष्ट होना आरंभ कर दिया। एशिया से सस्ते मजदूर पेशा लोगों के आगमन ने पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश के लोगों को आतंकित कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि जापानियों को आत्मसात करना संभव नहीं। वे जानते थे कि जापान की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और इस बढ़ती हुई आबादी को जापान में खपा पाना संभव नहीं है। इसलिए यह आशंका थी कि यदि जापानियों के इस अप्रवास पर रोक न लगाई गई तो तो इस क्षेत्रीय आबादी वाले प्रशांत तटवर्ती प्रदेश में शीघ्र ही गैर अमेरिकी वर्ग के लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि वहाँ का अमेरिकी या यूरोपीय मजदूर वर्ग एक ऐसी जाति के लोगों के सामने जिनका जीवन स्तर अत्यधिक निम्न है, या तो टिक नहीं सकेगा या उसके साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होना चाहेगा, जिसके फलस्वरूप वे या तो गरीब हो जाएंगे या उस क्षेत्र से अलग हो जाएंगे, और धीरे धीरे तटवर्ती राज्य पूर्वी लोगों से भर जाएंगे और एक दिन वे राज्य अमेरिकी प्रदेश के बजाय जापानी आबादी वाले प्रदेश बन जाएंगे। उनकी यह आशंका कुछ हद तक सही भी थी। अमेरिका के कुछ लोगों में तीव्र जापान विरोधी भावना थी। इस भावना के रहते संघर्ष अनिवार्य था। अंतर्विवाह की मान्यता प्राप्त न थी, जिससे जापानी उनमें घुल मिल न सके। पहले पहल सन 1900 में कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। टोक्यो सरकार ने संघर्ष से बचने के लिए जापानियों ने अमेरिका में उत्प्रवास पर प्रतिबंध लगा दिए। सन 1903 में शिकागो में हुए श्रम सम्मेलन ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। इसकी रिपोर्ट जापानियों के आप्रवास के विरुद्ध थी। 1905 में सैन फ्रांसिस्को में जापानियों एवं कोरिया के लोगों के बहिष्कार के लिए एक संघ का संगठन किया गया। 1906 में जब सैन फ्रांसिस्को के स्कूल के अधिकारियों ने जापानी विद्यार्थियों को अमेरिकी विद्यार्थियों से पृथक करने का प्रयत्न किया, तो यह प्रश्न फिर से सामने आया। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की सलाह से स्थानीय अधिकारी एक शर्त पर इस प्रश्न को छोड़ देने पर सहमत हुए कि भविष्य में हवाई मैक्सिको और कनाडा से जापानियों के अमेरिका में अप्रवास को रोकने की जिम्मेदारी केंद्रीय प्रशासन अपने ऊपर ले ले। 1907 में कांग्रेस ने एक अधिनियम के अधीन राष्ट्रपति को जापानियों के और अधिक अप्रवास को रोकने का अधिकार दे दिया। इसके पश्चात राष्ट्रपति ने हवाई, मैक्सिको और कनाडा से जापानियों के गमनागमन पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। उसने टोक्यो सरकार से भी इस विषय पर बातचीत शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच एक आपसी समझौता हुआ, जिसके अनुसार जापान अपने देश से श्रमिक वर्ग को अमेरिका जाने से रोकने पर सहमत हो गया।